नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर। पेरू में नाजका शहर के पास एक विमान दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले नहीं रोकता और बातचीत के लिए आगे नहीं आता तो अमरीका अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करेगा। उधर अमरीका ने पश्चिम क्षेत्र में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और हालात बिगड़ने की स्थिति में क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह इसराइल के अहम ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमरीका के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ मंगलवार को सेउटा में अवैध अप्रवासन पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक करेगा। ये बैठक स्पेन और कुछ अन्य सदस्य देशों के बीच लोगों की घुसपैठ की घटनाएं होने के बाद हो रही है। मोरक्को से लगभग 60,000 लोग स्पेन में अवैध रूप से घुस चुके हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ के 22 देशों ने मिलकर इस संबंध में निर्णय लेने और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमले जारी हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान में नागरिक जबरन लापता हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
बलूच यकजहती कमेटी BYC ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्यवाही की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बजाय नागरिकों को निशाना बनाने की कड़ी आलोचना की है। ये बयान POJK में जारी अशांति के बीच आया है, जहां हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। BYC ने कहा कि POJK में 52 दिनों से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शन, लोगों की मौलिक अधिकारों, संसाधनों तक पहुंच, राजनीतिक स्वायत्तता और न्याय की मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से POJK में कथित दमनकारी कार्रवाई पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए पूजा।
सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2 लाख रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईद बख्तियार ओदिलवुच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार ये विस्फोट भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:30 बजे कुंद्रिस्क्या स्क्वायर स्थित एक इमारत में हुआ। रूस की समाचार एजेंसी ने आतंकवाद रोधी समिति के हवाले से बताया कि अज्ञात महिला के रेस्तरां में घुसने के प्रयास को एक सुरक्षा गार्ड ने विफल कर दिया। इसके कुछ ही क्षणों बाद ये विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच जारी है। जापान के कुमामोटो प्रांत में पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत भूकंप के कारण हुई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला आज वियतनाम की थुई लिन युएन से होगा। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में ग्वेन से हारकर बाहर हो गई हैं। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने आज बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेइनोइन की जोड़ी को हराया। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के जबरन लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईद बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। कुल पदकों की संख्या 39। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।